और कुहरा से बनाई हुई कुहरा से बनाया हुआ तमह क्या काम करेगा। एक तो ये उदाहरण दे रहे हैं और दूसरा खद्योत्तरचरिवाहनी, और दिन में जब सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है तो उसमें खद्योत का अर्चि क्या करेगा। खद्योत मतलब जुगनू, सूर्य उगा हुआ है और एक जुगनू यह कोशिश करे कि ऐसा प्रकाश दूं कि सूर्य की आंख चकचका जाए, चमचमाहट। क्या वो प्रकाश देगा? दिन में तो पता ही नहीं चलता है कि उसमें प्रकाश है कि नहीं, सूर्य तो बहुत दूर है, तो क्या वो प्रकाश प्रभाव डालेगा सूर्य पर। दिन में भी वैसे ही चमकते हैं जुगनू, लेकिन सूर्य के प्रचंड प्रकाश में वो दिखाई नहीं पड़ता। इस तरह से भगवान की शक्ति है। ब्रह्मा शिवादि वास्तव में कुछ भी नहीं है भगवान कृष्ण के आगे। ये उपमा देखिए, तम्यम तमोवन नैहारम खद्योत्तरचरिवाहनी, दो उदाहरण दे रहे हैं। तो महती तर्मायेशम निहंत आत्मनि झुंझत, तो कोई भी व्यक्ति जब इतर माया महान पुरुषों पर, जब कोई तुच्छ व्यक्ति छोटा व्यक्ति अपनी शक्ति चलाता है तो उसका आयुष्य उसकी शक्ति की ही क्षति होती है, उसका आयुष्य चला जाता है, उसका सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। किसी महान शक्तिशाली व्यक्ति पर कोई तुच्छ शक्ति वाला अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो उसकी शक्ति ही नष्ट होती है, न कि वह महान शक्ति वाला व्यक्ति अभिभूत होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह श्री ब्रह्मा जी ने भगवान पर अपनी शक्ति चलाया कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं और मैं सत्य लोक में मेरी स्थिति है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूं, पूर्वज हूं, भगवान के बाद तो मैं ही हूं, तो मैं जरा इनको चक्कर में डालकर देखूं कैसे रो रहे हैं, गा रहे हैं, ब्रज में रोते हुए जाएंगे, कहेंगे कि हमारे बछड़े चले गए, चोरी किए। जो भगवान है बच्चों का जूठन खा रहे थे तो थोड़ा उनको रुला करके ब्रह्मा जी एक आनंद लेना चाहते थे, लेकिन वो रोए गाये कहां से, ब्रह्मा जी स्वयं ही चक्कर में पड़ गया, कोई प्रभाव नहीं डाल सके। एक अवसर पाकर श्री सुखदेव गोस्वामी सावधान कर रहे हैं तुच्छ शक्ति वाले लोग, महती महत पुरुष पर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो भी शक्ति है पहले से वो भी नष्ट हो जाए। जैसे श्री प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, पुनर्मुसिको भवा, एक बार एक मूस था मुसिक, तो वो बिल्ली के उपद्रव से तंग हो गया था, एक आश्रम में रहता, बहुत तंग हो गया। उस आश्रम में एक संत रहते थे तो उनकी शरण लिया और कहा कि गुरुदेव मुझको बिल्ली बहुत तंग कर रही है, हमेशा मुझे बिल में ही रहना पड़ता है, न खा रहा हूं न घूम रहा हूं, आक्रमण करती है। तो महात्मा ने पूछा क्या चाहते हो, तो हमारी कुछ शक्ति बढ़ाइए। अच्छा, शक्ति बढ़ाए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है तब तुम बाघ हो जाओ। और कैसे कैसे शक्ति बढ़ते बढ़ते बात हुई थी, एकाएक नहीं हुई थी, नहीं उस तरह की घटना है कि बिल्ली झपट रही थी, तो उसने कहा कि हम बहुत उपद्रुत हैं, आप कुछ प्रबंध कीजिए। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है बिल्ली हो जाओ तुम, तो बिल्ली हो गया, तो बिल्ली से भय नहीं रहा, लेकिन अब कुत्ते झपटने लगे उसमें, तो फिर शरण लिया कि हम पर कुत्ते झपट रहे हैं। तो महात्मा ने कहा ठीक है कुत्ता हो जाओ, तो कुत्ता हो गया, तो अब उसको मारने के लिए गाय दौड़ती थी, बैल भी मारने दौड़ते थे। तो उसने कहा कि गुरु जी हमको बहुत दुख हो रहा है इन पशुओं से, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम गाय बन जाओ। गाय बन गया तो फिर कहता है गुरुजी हम पर बाघ है, तड़पता है, बाघ से बहुत डर लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बाघ हो जाओ। तो जब बाघ हो गया तो अपने गुरु से ही कहता है, अब तो मुझे भूख लगी है और हमारा स्वभाव आपने बाघ का बना दिया, तो मैं अब आपको खाना चाहता हूँ, मैं आपको खाऊंगा, अपनी शक्ति लगाना चाहा आप गुरु पर, मैं आपको खाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा पुनर्मुसिको भव, सुनते ही कहा फिर से मुस हो जाओ, जाओ फिर चूहा के चूहा रहो। पुनर्मुसिको भव, यह न्याय है संस्कृत। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा विकास कर लिए तो बहुत महान लोगों पर ही अपना जादू चलाना चालू करते हैं, अपनी शक्ति आजमाना चाहते, तो वही फिर पुनर्मुसिक हो जाते, पुनर्मुसिक हो। नकल नहीं करनी चाहिए महान पुरुषों की, और कभी भूल करके भी उनको अभिभूत करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि मैं उनसे बढ़ गया, उनको दबा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं तो अपनी ही शक्ति की हानि हो जाती है। आयुष्यम निहंती आत्मनि, अपने में जो आयुष्य है, ईश्वरताई है, वही नष्ट हो जाती है व्यक्ति। तो ब्रह्मा जी की अकील इस समय गुम हो गई। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, ये क्या हो गया, इस तरह से चिंता में पड़े हुए थे। तब तक जितने भी बछड़े और बच्चे थे सब भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देने लगे उनको, वो तो थे ही विष्णु, अब असली दर्शन इनको चालू हुआ। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यंत घन श्यामा पीत कौशेय वाससः। तावत, जब तक वे सोच ही रहे थे और चिंता में पड़े हुए थे अब क्या करें, क्यों ऐसा कार्य किए, तावत उसी समय सर्वे वत्सा पालाश्च, इसका अर्थ यह है वत्सपाला का अर्थ वत्साश्च पालाश्च, समस्त बछड़े और उनके पालक व्यदृश्यंत विशेषण अदृश्यंत दिखाई देने लगे, कैसे घनश्यामा, अब बछड़ों का रूप तुरंत बदल गया, वही शरीर घनश्याम सांवले बादल के समान दिखाई देने लगा, पीत कौशेय वाससः पीताम्बर पहना हुआ, मतलब भगवान श्री हरि का रूप में चतुर्भुज घनश्याम, भगवान का यह स्वरूप वेदों में और लोक में भी सुप्रसिद्ध है। एक बच्चे से भी पूछिए कि भगवान के शरीर का क्या कलर है तो कह देगा कि ब्लू है, कई बार हम पूछ करके देखते हैं सब जगह, छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं भगवान के शरीर का रंग क्या है, नीला है, ब्लू, तुरंत बोलते हैं। और थोड़ा पढ़ गए हैं फिलॉसफी, उन लोगों से पूछिए कि भगवान का रंग क्या है तो कहते हैं भगवान का कोई रंग नहीं, उनका दिमाग देखे। अब वो ज्यादा पढ़कर पता लगा लिए कि भगवान का कोई रंग नहीं। हाँ वो आगे पढ़ गए, अब भगवान का रंग दूर करना चाहते, भगवान हाथ में क्या लिए रहते हैं बच्चे तुरंत बता देते हैं, बांसुरी फ्लूट जो भी भाषा जानते, सिर पर क्या रखते हैं, मोरपंख रखते हैं। एक बच्चे से मैं पूछा अभी हाल में ही, भगवान के साथ कौन कौन एनिमल रहता है, कौन पशु रहता है, तुरंत उतर गया छोटा सा बच्चा, काऊ, काऊ रहता है, गाय रहता है, भगवान के साथ कौन पशु खड़ा रहता है, तो गाय, ऐसा नहीं कि भगवान के साथ सुअर खड़ा है, ऐसे वो भगवान कोई भी पशु रख सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में भगवान हैं उनकी लीला में गौएं खड़ी है। भगवान कुत्ता भी नहीं रखते हैं, केवल एक अवतार में रखे थे कुत्ता दत्तात्रेय के रूप में, बाकी कभी कुत्ता नहीं रखते, गाय रखते हैं, सुरभि रविपाल अंतम, ये सब भगवान के स्वभाव है, उनकी क्रियाएं है, इसका ज्ञान होना चाहिए, तुरंत उत्तर देना चाहिए। भगवान कैसे है तो बांसुरी बजाते हैं, मोरपंख धारण किए हैं, गाय का पालन करते हैं, ये भगवान है। तो घन श्याम भगवान का सांवला शरीर है और पीला वस्त्र पहनते हैं, पीत कौशेय वास, सब बच्चे और बछड़े दिखाई देने लगे ब्रह्मा जी को अपने वास्तविक रूप में। चतुर्भुज शंख चक्र गदा राजीव पाणय, चार चार भुजाएं सबकी थी और भुजाओं में शंख चक्र गदा और राजीव कमल। किरीटिना कुंडलिना हारिणो बन मालिना, सबके सिर पर खूब सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल, गले में रत्नों के हार, इसके साथ ही साथ बनमाला भी, फूलों की माला। श्री वत्सांग दो रत्न कम्बु कंकर पाणय, नूपुर ही कटकय भाता कटे सूत्रांगुली ये कही। और सबके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह, चूंकि सभी भगवान है, वो कोई जीव तत्व तो नहीं थे, सब कृष्ण ही बने हुए थे, इसलिए श्रीवत्स का चिन्ह अंगद रत्न से अर्थ है कौस्तुभ मणि, कम्बु कंकड़ पाणय, और कंठ उनका कम्बु जैसा था या रत्न कम्बु, गले में रत्न कौस्तुभ मणि धारण किए थे, हाथों में कंकड़, पैरों में नूपुर, कटक और कटिसूत्र और अंगुलियक, अपने अंगुलियों में अंगूठी धारण किए थे। भगवान इस तरह सर्वदा सर्व श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। आंग्रि मस्तक मा पूर्ण तुलसी नवदाम भी कोमलई सर्वगात्रे सुभूरि पुण्यव दर्पितई, और सभी पैर तक लटकती हुई तुलसी की माला पहने थे। तुलसी नवदाम भी भगवान के लिए सब स्वरूप थे, और सभी मस्तक से लेकर गले से लेकर के और आयंघ्री अंघ्री पर्यंत पैर तक लटकी थी माला तुलसी जी की, बिल्कुल नव दाम भी, नई नई तुलसी की माला। अब बताइए उतनी माला बनाकर तुरंत पहना कौन दिया, भगवान है पहने हुए है, सभी सब में नई माला है सब में। कौन अर्पित किए हैं, पुण्यवत, जिन्होंने बहुत बहुत जन्मों में बहुत बहुत पुण्य किया है वही भगवान के पार्षद बनते हैं, और वे माला बना करके अर्पित किए, भगवत भक्त जन माला अर्पित करते हैं, भगवान को बनाते रहते हैं। वैकुंठ में अनंत अनंत कोटि भगवत पार्षद हैं, भगवान एक हैं लेकिन पार्षद अनेक हैं। इस प्राकृत प्रपंच से कम तीन गुना ज्यादा संख्या है वहां भक्तों के, वे भगवान की सेवा में रहते हैं, उनको भूरी पुण्य कहा गया। एक ब्रह्मांड में जितनी जीवों की संख्या है उतने तीन गुना नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं चार अचार उनसे कम तीन गुना है वहां पर संख्या है, भूरी पुण्य, और वह लोक भरा हुआ है पुण्यवान पुरुषों से, भूरी पुण्य, बहुत पुण्य किया है, भजन किया, भक्ति किया है उन लोगों ने, तो उनको एक दिन अवसर मिलता है भगवान की सेवा का, भगवान को माला पहनाने का, चामर डुलाने का, पंखा डुलाने का। ये जो हम लोगों के इस पृथ्वी पर अर्चा विग्रह स्थापित किए जाते हैं तो एक अवसर दिया जाता है जीव को वह कार्य करने का जो वैकुंठ में करना है, भगवान की सेवा करनी। तो कोमलई सर्वगात्रेषु भूरिपुण्यव दर्पितई, कोमल कोमल मालाएं पहनाई गई थी, कोमल मालाएं थी तुलसी जी की। बहुत कभी कभी कुछ लोग माला बना देते हैं इस संसार में बहुत कठोर, ये विचार नहीं करते हैं भगवान का अंग में चुभ रहा होगा। सर्व गात्रेषु कोमलई, किसी भी गात्र में वो माला बहुत कोमल लगती थी भगवान की, बहुत मृदु, तो ऐसी माला बनी थी और भूरी पुण्य बनाए थे। चंद्रिका विशद अस्मे रही सारुणा पांग वीक्षित ही, और सभी भगवान ऐसे हंस रहे थे, ऐसा लगता था कि चंद्रमा की किरण फैल रही है, एक हास्य को चंद्रिका कहा जा रहा है, चंद्रिका विशद चंद्रमा की किरण के समान विशद फैलने वाली स्मेर का अर्थ मुस्कान। प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक बछड़ा, तो वो तो अब बछड़ा और क्या उनको कहना है, तो सभी भगवत स्वरूप हैं, तो भगवान कितना प्रसन्न रहते हैं। भगवान के मुख कमल से मुस्कान की मुस्कान बिखरता रहता है, तो उनका बदन चंद्रमा की तरह है और चंद्रमा की किरणों के समान मुस्कान फैलाते हैं कि जो व्यक्ति देखता है वही आनंद में डूब जाता है। जैसे चंद्रमा उगते हैं तो अपनी शीतल किरणों का संचार करके वे ताप मिटा देते हैं, वैसे भगवान का मुख देखते ही सारा दुख दूर हो जाता है। तो चंद्रमा की शीतल सुखद किरणों के समान मुस्कान बिखेर रहे थे और अरुणाई थी उनके नेत्रों में, उससे वे देख रहे थे सब। स्वकार्था नाम इव रजस सत्वाधम सृष्टिपाल का सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के आंखों में लालिमा है और चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख में किरणें हैं, मुस्कान है, तो यह सत्गुण का काम कर रहा है। मुख की मुस्कान और आंख की लालिमा रजोगुण जैसा लग रही है, तो लगता है कि भगवान सृष्टि कर रहे हैं और पाल रहे हैं। किस चीज का? स्वकार्था नाम युवा, भगवान के भक्तों के मन में मनोरथ की सृष्टि भी कर रहे थे और उसका पालन भी कर रहे थे, उसे पूरा भी कर रहे थे। भगवान की मुस्कान और उनकी चितवन देख करके भक्तों के हृदय में बहुत मनोरथ उत्पन्न होता है, और मनोरथ क्या होता है कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार करें, हम पर देखें, तो मानो अपने भक्तों के मनोरथ को वे उत्पन्न भी कर रहे थे रजोगुण द्वारा और सत्वगुण द्वारा पालन भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक दिए जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक भागवत सप्ताह भी एक फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों यहाँ पर ये बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सृष्टिपाल का, सृष्टि करने वाले और पालन करने वाले, भगवान को देखे बिना तो मनोरथ होते ही हैं भक्तों में, लेकिन भगवान को देखने के बाद अनंत अनंत मनोरथ उठते हैं। उनको कहते हैं स्वक अर्थ, अपने भक्तों का अर्थ, तो भगवान उन अर्थों को उत्पन्न भी करते हैं और उन मनोरथों को पूरा भी करते हैं। यह यहाँ सिद्धांत है। ब्रह्मा जी ने देखा कि चर अचर सभी जीव सेवा कर रहे हैं उनकी, आत्मादि, आत्मा मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ही जिनमें आदि थे और स्तंभ तृण पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव चर अचर नाच गान और अनेक उपहारों से अलग अलग उपासना कर रहे थे सबकी, और अणिमान लघिमा आदि सिद्धियां मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा कर रहे थे, तथा अजा माया आदि भगवान की विभूतियां भी सेवा कर रहे थे, और 24 तत्व भी मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रहे थे। 24 तत्व में जैसे महदाद भी, भगवान कपिल देव ने गिनाया है और भगवान ने भी एकादश स्कंध में गिनाया है कौन कौन तत्व होते हैं। तो तत्व ऐसे जैसे 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेन्द्रियां, तो 10 तो ये हुए और 5 महाभूत और सूक्ष्म भूत, 20 ये हुए, और इसके बाद मन अहंकार तथा महत्त्व और प्रकृति, ये 24। इसी में कुछ बढ़ाई जाती है संख्या, मन और अहंकार के बीच में एक बुद्धि रख देते हैं, तो कोई कोई विद्वान कहते हैं कि 25 संख्या 25, और प्रकृति के अलावा भी 3 गुणों को अलग गिनते हैं, तो 25 तीन 28 कर देते हैं। और भगवान गिन करके कहते हैं विदुषाम किम शोभनम, विद्वानों के लिए कुछ भी अशोभन नहीं, जैसे गिने वही ठीक। उद्धव जी ने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि तत्व 20 होते हैं, 26 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं, वास्तविकता क्या है? तो भगवान कहते हैं कभी कभी 2 को 1 में गिन देते हैं, कभी कभी 1 में से ही 3-4 निकालते हैं, तो गिनने का प्रकार है, मुख्य रूप से 24 तत्व प्राकृत तत्व, ये सब सेवा कर रहे थे उनकी। और काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमही ध्वस्त मही भी मूर्ति मद्भी उपासिता। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुण आदि ये सब सेवा कर रहे थे उनकी। सेवा करने का यहाँ अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी ने देखा कि सब इनकी शक्ति है। काल इसको क्षोभक कहा जाता है, प्रकृति के गुणों में जो क्षोभ पैदा करता है उसको काल कहते हैं। और स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है निसर्ग का कारण। निसर्ग का अर्थ है सृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह किया जाए, जैसे पंच महाभूत हैं तो उनको किस तरह से रूपांतरित किया जाए वो स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे तुलसी का पत्ता है हरा निकल रहा है पृथ्वी से, किसी वृक्ष का पत्ता लाल होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का कुछ होगा, तो इसको स्वभाव कहा गया, परिणत होता है संस्कार। संस्कार और स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। संस्कार का अर्थ होता है तत्त्व वासना को उभारने वाला एक कर्म फल। किसी व्यक्ति में इस समय कौन सी वासना चल रही है, भक्ति वासना या भोग वासना या एक भिन्न प्रकार का विचार, तो उसको संस्कार द्वारा प्रभावित कहते हैं। जैसा कहते ना, जैसा संस्कार होगा वैसा करेगा। संस्कार का अर्थ है जो हमारे कर्म जमा किए गए हैं, संचित कर्म है, उन कर्मों में वर्तमान में किस कर्म को चालू किया जा रहा है उसका संस्कार करके। संस्कार के अर्थ दो होते हैं कि और अधिक उसमें मसाला मिला करके बुरा बनाया जा रहा है या उसके प्रभाव को कम किया जा रहा है, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाजार से सब्जी लाते हैं, हम लोग सब्जी लाते हैं, दाल बनाते हैं, तो कहते हैं ना कि इसका संस्कार कर दो, इसको बनाओ। तो यहाँ संस्कार का अर्थ है उसको छील देना, काट देना और सब कर देना। लेकिन रियल अर्थ में जो यहाँ संस्कार शब्द है उसका अर्थ यह है कि कर्म फल हमें दिया जाएगा, हमारे मन को प्रभावित करेगा वो कर्म फल। लेकिन उस समय संस्कार का अर्थ है कि प्रकृति द्वारा, संघ द्वारा जैसे तैसे वो कर्म कुछ विशेष प्रकार का हो जाता है, उसको मतलब उसे मसाला मिलाना, ये करना। जैसे वर्तमान में हम कोई संग कर लिया अच्छा या बुरा संग कर लिए, तो हमारे स्वभाव को थोड़ा सा वो तेज करता है, तो उसी को संस्कार कहते हैं। जैसे सांप का स्वभाव है डस लेना, क्रोध में रहना, लेकिन कदाचित किसी संग से या किसी जड़ी बूटी से या चाहे जैसे जैसे उसको इस समय डसने की प्रवृत्ति नहीं है, तो कहेंगे कि ये संस्कार, संस्कार बस नहीं डस रहा है। चाहे ज्यादा डसने लगे उसमें कोई कारण हो जाए। और काम डिजायर से कर्म प्रकृति के गुण है। भगवान की महिमा के आगे इन सब की महिमा निरस्त थी, ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। अनंत अनंत भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी देख रहे हैं और सभी स्वरूप सत्य अर्थात इटर्नल थे, नित्य थे, ज्ञान घन और अनंत आनंद मात्र थे। केवल आनंद ही आनंद और आनंद रस की एकमात्र मूर्ति थे। यहाँ तक कि उपनिषद पढ़ने वाले, उपनिषदों का भावार्थ जानने वाले विद्वान भी उनकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ थे। अस्पष्ट अस्पृष्ट भूरी महात्म्य अपि युपनिषद दृशान। जो लोग केवल उपनिषदों की दृष्टि से देखते हैं किसी चीज को, अर्थात वेदांत के पारदर्शी विद्वान विद्वत गण भी उनकी महिमा का स्पर्श नहीं कर सकते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी देख रहे हैं सभी बच्चों को और बच्चनों को इस रूप में, भगवत स्वरूप में। एवं सक्री ददर्शा जह पर ब्रह्मात्मन खिलान जस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम। इस प्रकार अजह ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी श्री कृष्ण के ही रूप में बन, श्री कृष्ण से ही आविर्भूत हैं और श्री कृष्ण ही इन सब रूपों में हैं, जिसके प्रकाश से, जिसकी शक्ति से सारा जगत प्रकाशित होता है, रचा जाता है। वही परम पुरुष इन सब रूपों में है। ततोति कुकुतोद्वृत्यस्तमीत एकादश इंद्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तु श्रीं पूर्देव्यंति वपुत्रिका।
तो सबको विष्णु रूप में देख करके और इतना तेजस्वी रूप में देख करके ब्रह्मा की क्या दशा हुई।
अति आश्चर्य से ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां स्तंभित हो गई, स्तिमित एकादश इंद्रिय बिल्कुल स्तंभित से हो गए। कोई ना हाथ चल रहा था, न आंखों में कोई हलचल हो रही थी, बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए। खड़े नहीं थे, हंस पर चढ़े हुए थे, बैठे थे अपने हंस पर, अपने वाहन पर, लेकिन इनकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं। और तब धामना तेसम धामना, तो जितने भगवत स्वरूप देख रहे थे उनके प्रकाश से, उनके तेज से सकपका गए। और ऐसे अपने वाहन पर पड़े हुए थे जैसे लगता है कि गांव की कोई देवी है और देवी के सामने कोई पुतलिका पड़ी हुई है। जैसे आजकल के बच्चे वो प्लास्टिक के छोटे छोटे बच्चों से खेलते हैं, उसको डॉल कहते हैं, गुड़िया या तो जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव चीज है, चार सिर वाला बना करके, और कोई ऐसे खड़ा कर दे चुपचाप, तो उसमें पलक गिरते हैं, हाथ हिलता है, क्योंकि निष्प्राण है। तो ब्रह्मा जी ऐसा अपने वाहन पर थे, लगता था कि पूर्व देवी, गांव की देवी के सामने कोई बच्ची खेलती हुई आई है और वो खड़ा कर दी है पुत्रिका, पुतली। निस्तब्धता का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते, एकदम सकपका गए, हक्का बक्का हो गए, कोई बोली नहीं निकल रही थी, स्तुति भी करने में समर्थ नहीं थी। सोचते बकार न निकलना, कुछ भी बोली नहीं आ रही थी, स्तंभित थी। इति इस प्रकार जब इरे से, जब ईरा के इस सरस्वती के प्रवर्तक ब्रह्मा जी की ये दशा हुई, इस प्रकार ब्रह्मा जी जो अनीश थे वास्तव में, और भगवान की महिमा को देख करके इसके विषय में ये सोच रहे थे कि निदम, ये क्या हो रहा है, ये हमारे सामने क्या हो रहा है, ये बछड़े पहले दिखाई दिए, फिर गोप रूप में दिखाई दिए, और अब सब विष्णु रूप में हो गए, ये हो गई, क्या हुआ। अनंत महिमा में अतर्क्य भगवान में ये अपनी माया दिखाने चले थे। वेदांत जिनका वर्णन करते हैं और वास्तव में जो जगत से बिल्कुल भिन्न है और स्वप्रमिति के स्वतः प्रमाण है, भगवान की महिमा अपने आप में अपनी ही जैसी है, वैसी महिमा किसी की नहीं है। तो ऐसे प्रभु पर जब अपनी माया दिखाना चाहते थे और कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ब्रह्मा जी बिल्कुल सकपका गए और बिल्कुल मोह में पड़ गए। उनकी इस दशा को देख करके तब अजन्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया जवनिका को हटाया, अपने एक शक्ति को हटाया। अर्थात हटाने का अर्थ है कि जितना भी विष्णु रूप में वो बने हुए थे, अब सब सबको वे समाप्त कर लिए। जब समाप्त कर लिए तो ब्रह्मा जी की पहले क्या दशा थी कि वे हंस पर पड़े पड़े अब आंख बंद करके और मरे जैसे हो गए थे, बोली निकल ही नहीं रही थी, कुछ देख ही नहीं रहे थे, हाथ चल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं, तो मरे जैसे उठे, मरे मर गए थे नहीं कह रहे हैं, लेकिन मर करके कोई उठे उस तरह से उठे, ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष कह परे तव दुत्थित, ततो अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष, भीतर तो चेतना थी उनके, लेकिन अर्वाक बाहर अब चेतना प्राप्त किए। जब विष्णु रूप सारा तिरोहित हो गया, भगवान ने हटा लिया माया, तब कह
अर्वाक प्रतिलब्धाक्ष, अब बाहर उनकी वृत्ति हुई, आंख से देखने लगे, धीरे धीरे हाथ पैर हिलने लगा, तो परेतवत उत्थित, लगता था कि मर करके फिर से जीवित हो गए। और कृष्णादुन्मिल्य वह दृष्टि राक्षसेदम सहात्मना, और बड़े कष्ट से दृष्टि खोले, आठ नेत्र अपने खोले, एक एक सिर में दो दो नेत्र हैं, तो आठ आंख खोले, बड़े कष्ट से खोले और देखे, इदम सह आत्मना, अपने साथ इसको देखे, इदम किसको, सुखदेव गोस्वामी ब्रज में बैठे बैठे कथा कह रहे हैं मनन से, तो कहते इसको देखे, ब्रज को और अपने को देखे। और उसी ब्रज में सपद देवाभिक पश्चन दिशो पश्यत पुरस्थितम, इसके बाद चारों तरफ चारों दिशाओं में देखने लगे, चार सिर थे इसलिए चार दिशा में देखने में कोई हेर फेर मुड़ी का नहीं करना पड़ा उनको, वो देखने लगे, मर करके उठ गए थे ऐसा लगता था, तो इससे उनकी उस अवस्था पर जब वो भकुआए थे और इस दशा में मिलान करना चाहिए, कितना अंतर हो गया। तो सपदी एवं अभितः पश्यन, चारों तरफ देखे, तो अपश्यत पुरस्थितम, अपने सामने ही अस्थित, सबसे पहले क्या देखे, वृंदावनम, अब जो ओरिजिनल पहला दृश्य था उनके सामने फिर से आ गया। अपश्यत वृंदावनम, कथम भूतम वृंदावनम, जना जिव्य द्रुमाक किरणम, जन से भरा हुआ, अथवा जन का आजीव्य, मनुष्यों का या जीवों का जो आजीव्य वृक्ष होते हैं, ऐसे वृक्षों से भरा हुआ वृंदावन देखा। पहले वन दिखाई दिया, इसके बाद वृक्ष देखने लगे, और वृक्ष भी आजीव्य वृक्ष, जिनमें फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, ऐसे अच्छे अच्छे वृक्ष। वृंदावनम जनाजीव्यम द्रुमाकृणम समाप्रियम, और जो देखने में बहुत प्रिय लग रहा था वृंदावन, अब जो विष्णु रूप में देखे तो ब्रह्मा जी को वो प्रसन्नता नहीं हुई, वो तो बहुत खिन्न हो गए, लेकिन वृंदावन को देखे तो प्रसन्न हो गए। उस वृंदावन की विशेषता बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अथवा ब्रह्मा जी देखे होंगे जिस दृश्य को, उसको बता रहे हैं। जत्र मई सर्ग दुर्वैरा सहा संद्री मृगादय, जिस वृंदावन में पशु, हिंसक पशु और मनुष्य भी साथ साथ रहते, जिस वृंदावन में वैर नहीं है, क्योंकि भगवान यहां वास करते हैं, निसर्ग दुर्वैरा, कुछ जीवों में जन्म से ही, स्वभाव से ही बहुत भयंकर वैर रहता है, जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को, अनजान कुत्ते को देख ले तो वो काटने दौड़ते हैं, इसको निसर्ग वैर कहते हैं। किसी बात के लिए, खेत के लिए, घर के लिए झगड़ा नहीं है, निसर्ग है यही अकारण वैर करना। या बाघ देख ले मृग को तो खाने दौड़ेगा, सांप देख अगर टच कर जाए किसी जीव से तो उसको काटेगा, जैसे निसर्ग वैर है, झगड़ा है। कभी कभी मनुष्यों में भी, आपस में भी जन्म से ही झगड़ा होता है, कलह होता है, लेकिन वृंदावन का ऐसा गुण है कि अजित आवास से, भगवान के वास करने से द्रुत रूट तर्स का अधिकम, यहाँ भूख प्यास और क्रोध बिल्कुल नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने देखा वृंदावन में, उन्होंने देखा कि किसी जीव में कभी कोई क्रोध नहीं, द्रुत का अर्थ भाग जाना, दूर हो जाना, रूट तर्स का अधिकार, ये वृंदावन का गुण बताया जा रहा है कि वृंदावन में किसी भी जीव में कभी बैर नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने देखा कि बाघ और आदमी एक साथ बैठे बातचीत कर रहे हैं, खा रहे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आए थे तो उस समय भी यही दृश्य था, आज से 500 वर्ष पहले लगभग, लेकिन अब बैर बढ़ता जा रहा है। अब तो बाघ और आदमी कहां से साथ में रहेंगे, आदमी आदमी साथ में रह जाए यही काफी है, लेकिन वास्तव में जो हम लोगों के नेत्रों से अलक्षित वृंदावन है वो अभी भी वैसा ही है। उसमें बैर नहीं। तो वृंदावन में नैसर्गिक बैर रखने वाले जीव भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, मित्राणी युवा मित्र जैसा रहते हैं। और वृंदावन में भूख नहीं लगती है, भूख भी एक शत्रु है, एक दोष है वास्तव में। भूख के चपेट में पड़ करके आदमी साधना नहीं करता है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, और भगवान से भी यह कहने में संकोच नहीं करता है कि भूखे भजन न होइ गोपाला, ले लो अपन कंठी मार, इतना तक पहले। इसलिए वृंदावन में भूख की समस्या भगवान नहीं रखते हैं, ये भाग जाते तो वृंदावन में। और रूट रूट का अर्थ है क्रोध, वृंदावन में क्रोध नहीं है। जो लोग क्रोध करते हैं वो समझना चाहिए कि वृंदावन सिद्धांत के विरुद्ध चल रहे, किसी पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ वृंदावन में क्रोध करेंगे तो वृंदावन में आए हुए या बसे हुए उनको मारना चाहेंगे ना, तो किसी ब्रजवासी पर या ब्रज में आए हुए व्यक्ति पर हाथ चला रहे हैं तो कितना बड़ा अपराध। इसी तरह से आदिकम से अर्थ है यहाँ चोरी नहीं है, वृंदावन में चोरी नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, और तृष्णा नहीं है विषयों की। यहाँ केवल भजन की तृष्णा है, भगवान से प्रेम करने की। ब्रह्मा जी ने सब देखा, तो वृंदावन का दृश्य देखा और वृंदावन के गुण को भी देखे, और इसके बाद वृंदावन बिहारी को देखे, और अंत में जो देखना है वास्तविक वो देखे। तत्रोद्वहत पशुप वंश शिशुत्व नाट्यम ब्रह्मा द्वयम् परम अनंत मगाध बोधम वत्सान सखी निव पुरा परितो विचिन्वन विचिन्वत एकम सपाणी कवलम परमेष्ठ चष्ट। तो परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी अंत में क्या देखे उस वृंदावन में, अद्वयम ब्रह्म एकम एव द्वितीयम, ब्रह्म एक ही है अद्वितीय है, तो उस अद्वितीय ब्रह्म को देखे, अद्वितीय ब्रह्म को वृंदावन में देख। कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, अगाध बोधम ब्रह्म, जिसका ज्ञान अगाध है उस ब्रह्म को, अनंत ब्रह्म को देख। और कैसा देखे? सपाणी कवलम, अपने हाथ में दही भात का कवर लिया था ब्रह्म, उस ब्रह्म को देख। सपाणी कवलम ब्रह्म ददर्श, देखे ब्रह्म को देखे इस रूप में। ये ब्रह्मा जी की परफेक्ट दृष्टि है, भगवान के पुत्र हैं, वास्तव में वेद के वे सबसे बड़े विद्वान हैं, इसलिए अब अद्वितीय ब्रह्म को देख रहे। सपाणी कवलम और एकम अकेले, और सखाओं के साथ नहीं, अकेले पर ब्रह्म भगवान को देखे वे घूम रहे थे। सपाणी कौलम ब्रह्म अद्वयम ददर्श व्यचस्त, तो पूरा युवा उस अद्वितीय अद्वय अनंत ब्रह्म को देखा श्री ब्रह्मा जी ने, हाथ में दही भात का कवर लिए हुए, और पूरा युवा पहले जैसा देखे कि वह अपने सखाओं को और बछड़ों को खोज रहा है। भगवान फिर उसी रूप में दिखाई दिए, बच्चों को खोज रहे थे और बछड़ों को इधर उधर व्यग्र चित से। हाथ में दही भात का कवर जैसे था वैसे ही रह गया, भगवान खाए नहीं, वो बछड़ा खोजे कि खाए, या खाने की फुर्सत कहां थी, वो चिंता में पड़े हुए थे। तो ब्रह्मा जी देखे वो खोज रहे हैं भगवान कृष्ण उसी रूप में, बच्चों को और बछड़ों को। परित विचिन्वत, परित सब और देख रहे थे, कुंज में, गुफाओं में, घाटियों में, जी के तटों पर, गहवर में, इधर उधर देख रहे थे, घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से कुछ देर तक देखते रहे। तो यहाँ पर भगवान के बहुत से विशेषण दिए गए हैं, जैसे अगाध बोधम, अनंतम, परम, अद्वयम, लेकिन ये सब तो निर्विशेष विशेषण है भगवान के, असली विशेषण दे रहे हैं सपाणी कवलम, हाथ में कवर लिया। और इसके द्वारा ये समझ लेना चाहिए कि जठर पट में बांसुरी खोसे हुए, बगल में बेंत दबाए हुए, सिंह लिए हुए और बहुत ही गंभीर शोक से युक्त मुख से वे खोज रहे बच्चों को और बछड़ों को। और भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी हंस पर से धड़ाम से कूद पड़े। अब भगवान से संपर्क करने के लिए कि बहुत गलती किया, हमें क्षमा कीजिए, ये कीजिए, देख लिए मंजू महिमा। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरण तो अवतीर्या पृथिव्याम बपुः कनक दंडमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटिभिरंघ्रि जुग्मं नत्वा मुदस्रु सुजलैर कृताभिषेकम्। भगवान को इस रूप में देख करके कि वृंदा में खोज रहे हैं बच्चों को, बछड़ों को, तो निज धोरणतः अपने धोरण से, वाहन से उतर गए, कूद पड़े उस पर, कूद कर जमीन पर आ गए। भगवान पृथ्वी पर घूम रहे हैं और ब्रह्मा जी ऊपर सवारी किए हुए रहे। एक तो उनको अपने कर्म पर ही भावना हो रही थी कि अपराध किया हूं, और अपराध करके और ऊपर हाई स्थान पर रहे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अवतीर्य कूद गए। और इतना ही नहीं, जमीन पर आ करके कनक दंड के समान अपने सुंदर शरीर को अभिपात्य गिराए। गिराने का यहां अर्थ है कि धीरे धीरे प्रणाम नहीं किए भगवान को, गिर पड़े धम से, भगवान से थोड़ा दूर पर, बहुत अपराध किए, बहुत अपराध किए, ये भावना से। ब्रह्मा जी के शरीर को श्रील सुखदेव गोस्वामी कनक दंड कह रहे। ब्रह्मा जी बिल्कुल सोना की तरह गोरे हैं, तप्त कांचन गौरांग, तप्त सोने की तरह उनका शरीर है। तो उसको अभिपात्य, अभिपात्य का अर्थ अभितः पात्य, बहुत अच्छा से गिराकर अपना हाथ आगे करके, इनके भी आठ हाथ हैं लेकिन ऐसे यहाँ पर दो ही किए होंगे, अब तो अपनी भगवत्ता छिपाए होंगे। चार सिर अभी भी थे लेकिन वे हाथ जोड़ करके और पैरों को पीछे करके अभिपात्य, अथवा अभिपात्य का अर्थ एक अक्रूर जी की तरह रज में लोटने लगे कि चारों मुख में धूल लग जाए और इधर उधर, तो अभिपात्य शब्द का अर्थ है। स्पृष्ट्वा चतुर मुकुट कोटि भी, अपने चारों मुकुट के अग्र भाग से भगवान के अंग्री युग्म दोनों चरणों का स्पर्श किए, बहुत हल्का, बहुत कोमल चरण थे, लेकिन यहाँ स्पर्श करने का मतलब कि वे छुआए नहीं, इतना साहस नहीं था कि कोमल कोमल चरण से और मुकुट छुआ, लेकिन एक प्रकार से लगा स्पर्श कर रहे हैं अथवा चरण चिन्ह को स्पर्श कर रहे हैं। ये भाव भगवान खड़े हो गए थे और भगवान ऐसा नाट्य कर रहे थे, लगता था कि भगवान चकित हो गए हैं कि ये चार सिर वाला कौन आ गया। वो अपने मित्रों को खोज रहे थे, बछड़ों को खोज रहे थे, ऐसे ही परेशान थे, तब तक चार सिर वाला एक जीव आकर के उनके सामने, उन्होंने वो ये भाव व्यक्त कर रहे थे, वो बिल्कुल चकित थे। सर्वज्ञ भगवान इस तरह से थे और ब्रह्मा जी से बात नहीं किए लास्ट तक। तो ब्रह्मा जी इस तरह लौटने लगे और रोने लगे, भगवान के जुगल चरणों में अपने आंसू चुआ दिए, मानो भगवान के चरण का अभिषेक हुआ। ब्रह्मा जी के चार दुनिया आठ नेत्रों से आंसू निकल रहे थे बारी बारी से, रो रहे थे और उठ उठ करके फिर गिर जाते थे चरण में। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरंचिरस्य पादयो पतन, उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन। यह चिरस्य का अर्थ लंबा समय तक, उठते थे उत्थाय कुछ देर के बाद, जो भगवान बोलते नहीं थे, चुपचाप थे, तो फिर उठते थे, फिर उनका दर्शन करके और फिर गिर जाते थे। तो बार बार गिरेंगे तो शायद भगवान कहेंगे कि जाओ माफ करते हैं, कोई बात नहीं ये सोच रहे थे। लेकिन भगवान तो ऐसे बच्चा बने थे कि वे अब बोलते ही नहीं, पूछे भी नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों लौट रहे हैं, क्या बात। और ब्रह्मा जी रो रहे थे, उठ उठ करके फिर गिरते थे, पादेह पतन चरणों के बीच में गिरते थे। आस्ते महित्वम प्रागदृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः, भगवान की पूर्व महिमा देखकर कि विष्णु रूप में हो गए थे चाहे और सब महिमा, तो उसका स्मरण कर करके पुनः पुनः गिरते थे चरण में, पुनः पुनः खड़ा होते थे, बहुत देर तक इस तरह से गिरते रहे। इसके बाद जब भगवान नहीं बोले बिल्कुल, तब अब स्तुति करने लगे। पहले बोल नहीं रहे थे, केवल रो रहे थे, सिसक रहे थे, चरण में गिर रहे थे। समय ही अथ था ये विमृज्य लोचने, इसके बाद उठे, आंख पोंछे, आठों आंख अपने पोंछे, आंसू पोंछे अपना और मुकुंद को देखकर विनम्र कंधर हो गए, कंधा झुका करके कृतांजलि हाथ जोड़कर प्रश्रयवन विनय से एकाग्रचित से, और सब बेपथु कांप रहे थे और गदगदया इलया अलत, गदगद इला से, इला माने बाणी, जैसे इरा शब्द आया था इरा या इला, गदगद बाणी से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। यह स्तुति बहुत प्रसिद्ध है, श्रीमद् भागवतम में बहुत पूर्ण सिद्धांत का वर्णन करने के लिए स्तुति है, वास्तव बहुत सुंदर स्तुति। तो उसका हम पहला श्लोक ले रहे हैं। नौमीड्यते ब्रपुषे तडिदंबराया गुंजावतंस परिपीछल सन्मुखाया वन्य स्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और अब तक अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया कि इस जगत में सबसे बढ़ करके परम सत्य कौन है, क्या है, और किस रूप के प्रति इनका अनुराग है, स्नेह है, कौन इनके चित्त को आक्रांत किया है, उसी रूप की स्तुति कर रहे हैं। गोप सखाओं को भगवान के रूप में देखा ब्रह्मा जी ने, तो वहां स्तुति नहीं किए, लेकिन वास्तव में जो ब्रह्म है, जिनकी लीला विचित्र है, और ब्रह्मा जी के हृदय पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है जिस रूप का, उसी रूप का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। नौमी इड्यते ब्रपुषे, नौमी हे इड्य, हे स्तुत्य, हे स्तुति के योग्य, ते नौमी तुभ्यम नौमी, लेकिन नौमी शब्द में तो द्वितीय लगेगा, लेकिन यह चतुर्थी भी भक्ति में वे प्रणाम कर रहे हैं। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं द्वितीयार्थे चतुर्थी, द्वितीय के बदले में यह चतुर्थी दिया गया, ते नमः होगा, अगर नमः शब्द होगा तब अभ्र बपुसे या तुभ्यम आदि शब्द जो भी लगाया जा सकता है, लेकिन नौमी में द्वितीय विभक्ति लगती है, नौमी नंद कुमारम, नंद कुमारम नौमी, लेकिन नमः शब्द रहेगा तो नंद कुमार आए नमः, ऐसे कहें। तो ब्रह्मा जी नौमी शब्द सबसे पहले कह रहे हैं, क्योंकि प्रणाम की भावना सबसे पहले है। नौमी इड्य, इड्य का अर्थ स्तुत्य, प्रशंसनीय, गुण गाने लायक, हे नाथ इस जगत में विश्व में आप ही केवल स्तुत्य, आपका ही गुण गाना चाहिए, हे स्तुत्य नौमी त्वामिति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब अभ्रबपुषे, किनको प्रणाम कर रहे हैं आप, नहीं, भगवान तो चकित है, पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं अभ्रबपुषे ते तुभ्यम। अभ्रवत बपुर जस तस्मय, अभ्र मेघ है, अभ्र का अर्थ होता है मेघ बादल, और जलधर सजल जल, सजल बादल, निर्जल बादल नहीं, जिस मेघ में जल हो, तो जल से युक्त बादल काला दिखता है, सांवला दिखता है। तो अभ्रवत बपुर जस्य, श्याम मेघ के समान जिनका शरीर है, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। नौमिद्यते ब्रबपु से तदिदम बराया, और कैसे व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं? तदितवत अम्बरम जस्य, जिनका अम्बर, जिनका वस्त्र तदित के समान है, विद्युत के समान है, चमचम चमक रहा है। भगवान का शरीर बादल के समान और उनका वस्त्र बिजली के समान, और इसमें यह भाव है कि हे नाथ कुछ वचनामृत बरसाइए, जैसे अभ्र वर्षा करता है तो आप भी कुछ बरसिए, नहीं तो मैं तो ऐसे मर जाऊंगा, कुछ बोलिए, हम पर कृपा कीजिए। भगवान इतना गंभीर थे, अपने वो तो अपने विपद में पड़े हुए थे, उनके बच्चे खोए थे और मित्र भूल गए थे, तो वो तो अपने शोक में थे, ये भाव व्यक्त कर रहे। और ये कह रहे हैं कि आप अभ्र बपू हैं तो आप कृपा कीजिए, कृपामृत की वर्षा कीजिए, कुछ बोलिए, हमारे कान तड़प रहे हैं। तो भगवान के अंबर कैसे हैं? तो विद्युतवत, तदित, तदित कहते हैं विद्युत, तदिदम वराय तदितवत अंबरम जस तस्मै नमः, आपको प्रणाम है। तो फिर ब्रह्मा जी के मन में आया कि मानो भगवान कह सकते हैं कि भाई अभ्रवत बपू तो भगवान विष्णु का भी है और पीताम्बर तो वो भी पहनते हैं, तो क्या उनको प्रणाम कर रहे हैं क्या? तब कहते हैं नहीं, गुंजा व तंस परिपीछ लसन मुखाय, गुंजा भी अव तंस कुंडलौ जस्य, ये कुंडले जस्य, फलम फले फलानी, ये अनपुंसक लिंग है इसलिए कुंडले हूँ। गुंजा के फलों को गुथ करके जो कुंडल पहने, भगवान ने रत्न के कुंडल नहीं पहनना चाहते थे ब्रज में, वन के गुंजा आदि को बांध लेते थे कान में, कुंडल लटका ले। तो गुंजा के अवतंस जिनके हैं, गुंजा भी अवतंस जस्य, दोनों कर्ण भूषण जिनके हैं, परिपीछ परिपीछ बरहा पीडम मयूर का पंख, तई लसन मुखाया, जिनका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि बच्चों के साथ भगवान श्रृंगार कर रहे थे, अपना भूषित होने पर भी अपने को भूषित कर रहे थे, तो तत्काल ही वृंदावन में जो भगवान श्रृंगार किए हैं और जिस रूप में है उसी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं। गुंजा वतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, यहाँ परिपिच्छ पिच्छ माने पूछ पंख, तो परिपिच्छ शब्द से मयूर पिच्छ ही ध्वनि था, मोर पंख से और गुंजा के अवतंस से आपका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, लसन मुखाय। यद्यपि भगवान सौंदर्य के आगार हैं, परंतु मोरपंख से और गुंजा से उनका मुख और अधिक अच्छा लग रहा है। जबकि भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, जैसे उद्धव जी करते हैं तो कहते हैं भूषण भूषणांगम, भगवान के अंग को भूषण सुंदर नहीं बनाते हैं, भूषण को ही भगवान के अंग सुंदर बनाते हैं। भगवान के अंग पर जो भूषण आते हैं तो वे भूषण चमकने लगते हैं, भगवान की शोभा उनसे क्या बढ़ेगी। परंतु वृंदावन के गुंजा से और मोरपंख से श्री कृष्ण का मुख लसत शोभमान और अधिक सुंदर लग रहा है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। गुंजा वतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, वन्य सृजे वन्या पुष्पमयी सृज माला जस्य तस्मै, जो वन के पुष्पों की अनेक मालाएं पहने हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। वन्य सृजे और कैसे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रीय, दही भात का कवल, कवलम कवल, वेत्रम विषाणम वेणुश्च तई लक्ष्म भी लक्षण है श्री शोभा जस तस्मय, इन विशेष वस्तुओं से जिसकी शोभा बढ़ रही है। ऊपर भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि गुंजा से और मयूर पंख से आपका मुख सुंदर लग रहा है और आप जो चार चीज धारण किए हैं इससे और सुंदर लग रहे हैं, कवल बेत्र विषाण और बेणु से लक्ष्मण श्री है। लक्ष्मण का अर्थ चिन्ह है, इन चार चिन्हों से इन चार आभूषणों से आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, शोभा आपकी बढ़ी हुई है। हाथ में दही भात का कवर है, कमर में बांसुरी है और दोनों बगल में एक तरफ बेंत और एक तरफ सिंह है। कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रीय और पशुपांगजाय पशुपस्य श्रीनंदस्य अंगजाय नंद राजकुमाराय तुभ्यम नमः। पशु का पालन करने वाले के पुत्र पशुप अंगज, अंग का अर्थ देह शरीर, पशुप पशु का पालन करने वाले श्री नंद महाराज, हे श्री नंद महाराज के पुत्र आपको मैं प्रणाम करता हूं। अंत में बिल्कुल ला रहे हैं रिजर्व अर्थ में, नहीं तो गुंजा व तंस परिपीछ तो और भी धारण किए थे बच्चे और भी, तो श्री कृष्ण को खास करके कहने के लिए कहते हैं अथवा और सखाओं के सहित भगवान को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि वे सब भी गुंजा व तंस परिपीछ लसन मुखाए और वो भी पशुपांग जायत सब जाता हुए एक वचन। तो बहुवचन में क्यों नहीं प्रणाम दिए अगर गोप सखाओं को प्रणाम करते हैं तो, मन में है उनको भी प्रणाम कर रहे हैं लेकिन जाति के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, पर मुख्य अर्थ भगवान कृष्ण है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे तो ब्रह्मा जी बहुत बहुत स्तुति कर चुके हैं भगवान की कि आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं पालन करते हैं, इसके पहले विष्णु स्वरूप या नारायण स्वरूप की प्रार्थना बहुत किए हैं, चाहे भगवान कृष्ण के भी किए हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ये सब तो कहे हैं। जसैक निःश्वसित काल मथावलंब्य ऐश्वर्य का बहुत वर्णन किए, लेकिन अब अपने जीवन का सारभूत अनुभव बता रहे हैं कि मैं तो आपके इस रूप को प्रणाम कर रहा हूं और इसी रूप का मैं नित्य सेवक रहूं, आपकी इसी लीला में मेरी रुचि हो, आप मेरे नेत्रों में मन में वाणी में इसी रूप से छाए रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। इसी को कहने के लिए विशेषण दे देकर प्रणाम कर रहे हैं और भगवान के सामने वही रूप है इसलिए प्रणाम करते हैं। नमिद्यत्रे ब्रबपुषे तदिदंबराया गुंजावतंस परिपेक्ष लसन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रीय मृदुपदे पशुपंग जाय। अब मृदुपद मैं भूल गया था, मृदुपद मृदु पदौजस्य जिनके चरण अतिशय सुकोमल हैं। भगवान बच्चा थे उस समय भी वृंदावन में जूता लगाकर नहीं बछड़ा चलाने जाते थे, मानते थे कि बछड़े हमारे इष्ट देव हैं, मैं सेवक बनकर जा रहा तो मैं जूता लगा करके नहीं जाऊंगा। तो उन कोमल कोमल चरणों को देख रहे हैं ब्रह्मा जी और उन्हीं कोमल चरणों से वे दरी कुंज गहवर में बच्चों को खोज रहे थे, तो उसको याद करके कहते हैं मृदु पदे जिनके दोनों चरण अतिशय मृदु हैं कोमल हैं और जो
गोप के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु शब्द यह नहीं कह रहे हैं, केवल माधुर्य परक ही शब्द लगा रहे हैं और इसी को स्तुत्य कह रहे हैं। भगवान का गुण गाना चाहिए, लेकिन किस स्वरूप का, किस लीला का गुण गाना चाहिए उसको बता रहे हैं। बस पशुपांग जाए, पशुपांगज नंद महाराज के पुत्र का गुण गाना चाहिए और यही प्रणाम के विषय। तो विश्व का सबसे बड़ा आचार्य उम्र में, ज्ञान में, संबंध में, वे जगत गुरु हैं, सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी वास्तव में इस विश्व में। लेकिन उनका जो रियलाइजेशन है वही वास्तविक रियलाइजेशन है, उसको समझना चाहिए। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग ब्रह्मा जी की परंपरा में, भगवान के उपासना की पद्धति श्री ब्रह्मा जी ने चलाया है। इसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए और सब गोस्वामी जन श्रील प्रभुपाद। तो यह हम लोगों का एक सौभाग्य है कि हम लोग इस परंपरा में हैं। इसमें बहुत ही विशद रूप से भगवान का ज्ञान दिया गया है और उपास्य है श्री कृष्ण, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण इस रूप में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में। ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय आराध्य। तो इस प्रकार यह सत्र तो अपनी पूर्णता के निकट पहुंच गया है। तो मैं बीच में अपना मन बदला था कि ये लीला ना कह करके कुछ और ज्यादा सिद्धांत कहूं वर्षा का वर्णन करके, लेकिन भक्तों ने आग्रह किया कि नहीं नहीं यही होना चाहिए। तो मैं थोड़ा मुकरना चाहता था, इसलिए कि मैं इसको पढ़ा नहीं था अच्छा से, बहुत वर्ष हो गया है पढ़ा हुआ, लेकिन जिनकी कथा कह रहा हूं वे प्रभु सब कुछ करते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से आप लोगों के सामने उनकी लीला कही गई। मैं अनुभव किया कि मैं जो कहना चाहता हूं तो भगवान हृदय में बैठे बैठे स्फूर्ण करा रहे हैं। जो बात याद रही थी वो भी याद आती है। तो अथवा भगवान की कृपा कहें कि आप भक्तों का सान्निध्य, आप कृष्ण की बात सुनने के लिए आए हैं, तो आपकी भक्ति के प्रभाव से स्फूर्ण होती है। मैं तो बिल्कुल निर्णय कर चुका था कि नहीं कहूंगा। दूसरा कारण एक और था कि 11वें अध्याय तक भागवत की टीका मेरे पास थी, यहाँ 12वें से टीका नहीं थी मेरे पास। तब मैं सोच रहा था कि अब उसको कहा तो इसको बिना टीका के कैसे कहूंगा, लेकिन जब ये हो गया कि नहीं कहना ही है, तब तक मुझे याद आया कि तो श्रीपद अखंडानंद सरस्वती जी के पुस्तकालय में जाकर देखूं, तो वहां जाने पर टीका मिल गई। कहा ठीक है इसको कह, ये भगवान की व्यवस्था थी। तो आप सब प्रत्येक वर्ष जुटते हैं सुनने के लिए, इसमें संदेह नहीं है कि सुनने के लिए जो व्यक्ति उत्कंठित हो वो वक्ता से अधिक भक्त है, भाग्यशाली है, क्योंकि कहने में तो कहने वाला तो आजकल तो मान सम्मान के लिए भी कह देता है ना, ये तो नेचुरल बात है। कहने के लिए तो बहुत लोग उत्कंठित भी रहते हैं गाने के लिए, क्योंकि उसे वाहवाही मिलती है, प्रशंसा मिलती है, लेकिन सुनने के लिए उत्कंठित होना वो तो शुद्ध भक्ति से ही प्रेरणा मिलती है। अगर भक्ति है तब आदमी सुनना चाहेगा। तो आप लोगों की भक्ति है, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति है, और भगवान ने इस तरह संग दिया अपने धाम में आप सब भक्तों का, और समाज में बैठ करके भगवान की गुणावली कहने का एक अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत ही अपने को धन्य समझ रहा हूँ। अहो वयम धन्य तमान लोके लोके। तो इस प्रकार अवसर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में। मैं सबसे पहले तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण का ही, कृष्ण को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके बाद कृष्ण के भक्तों को। जिनके प्रयास से सब हुआ, आयोजन हुआ और सब व्यवस्था की गई। व्यवस्था में फिर भी त्रुटि ही त्रुटि रह जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सहन किया, कोई बहुत भारी कंप्लेन नहीं आया, यह भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग तो प्रतिज्ञा करते हैं कि इससे अगले साल हम और भी सुधारेंगे, लेकिन जैसा चलता है लगता है भगवान की व्यवस्था चल रही है, जैसा चलता है चलता रहता है। जो कुछ भी है वास्तव में भगवान की कृपा है, नहीं तो ये सब आयोजन चाहने पर भी हो नहीं पाते। हमसे तो बंबई के भक्तों ने बहुत प्रार्थना किया था कि आप कई साल वृंदावन में कहे तो मेरा रोड में आप इस साल आइए। मैं कहा कि नहीं, मैं तो अपनी ओर से नहीं कह सकता हूँ, अगर महामाना प्रभु जी कहेंगे कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो कोई ये तो कहे कि नहीं और समय दे दीजिए जन्माष्टमी का, नहीं तो भगवान यही जन्म लिए हैं इसी भूमि में, तो आज तो इस विश्व के लिए सबसे बड़ा मंगल दिन है। भगवान जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो कुछ लोग उनको डायरेक्ट देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, तो मंगल ही मंगल होता है। भागवत में वर्णन है कि भगवान के आने के पहले ही सब जगह मंगल छा गया, जब गर्भ में थे। इसी का अनुवाद रामचरितमानस में है, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन भगवान गर्भ में आए उसी दिन सारे जगत में मंगल छा गया। तो अवतार ले करके जो मंगल करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन अवतार ले करके जो भगवान लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं को भगवान वेदव्यास देव और अन्य भक्त महाकवि जन लिखते हैं, तो वो लीलाएं जुग जुग तक मंगल करती रहती हैं। जब देवता लोग भगवान से कहने लगे कि अब आप चलिए अपने धाम लौट सकते हैं, धर्म की स्थापना हो गई और देवताओं का कार्य हो गया, द्वारका में सब आए, तो भगवान ने एक बात कहा कि धर्म की स्थापना तो हो गई लेकिन मैं यहाँ हूँ तो आगे भी लोगों की मति हमारी भक्ति में लगी रहेगी। तो देवता लोग कहते हैं कि आपका यश अब जुग जुग तक बना रहेगा और लोग गाएंगे सुनेंगे, बस उनका मंगल होता रहेगा, आप अपने धाम लौट सकते। तो देवताओं की प्रार्थना मान करके भगवान अपने धाम चले गए, यही सोच करके कि हमारा जस है इस जगत में। यही प्रश्न है नैमिषारण्य में ऋषियों का कि ब्रूही योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गत। भगवान धर्म और ज्ञान के साथ जब अपने धाम में चले गए तो अब इस विश्व में धर्म की रक्षा करने वाला कौन है? धर्मो भक्ति लक्षण, भगवान स्वयं बताए, मतलब कृष्ण भावना की, भगवत भक्ति की रक्षा कौन करेगा अब भगवान की अनुपस्थिति में? भगवान जब थे तो उनको देख करके लोग भक्त बन जाते थे, उनके बारे में सुनकर प्रेम करते थे सब कुछ। जैसा आपने सुना कि बलराम जी का प्रेम बढ़ गया उन बच्चों के प्रति, तो उन बच्चों के रूप में भगवान थे। कि भगवान जब इस जगत में रहते हैं तो अपने आप ही एक महाचुंबक की तरह, महाशक्तिशाली चुंबक की तरह वो सभी जीवों को खींच लेते हैं, यहाँ तक कि लता पता जड़ जीव भी उनसे प्रेम करते हैं, और की तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी आदि करते हैं, मनुष्य करते हैं, लेकिन वे जब चले गए तो अब उनसे जीव कैसे प्रेम करेंगे? इसका उत्तर सूत जी ने भी दिया है, सब जगह उत्तर आया है, स्वयं भगवान भी कहे हैं कि श्रीमद् भागवतम मेरा प्रेम देता रहेगा। इसको जो सुनेंगे पढ़ेंगे उनका वैसा ही कल्याण होगा जैसे कृष्ण के साथ रह रहे हो, ऐसा ऐसे कई भक्तों ने कहा है। तो भगवान का अवतार होता है लीला करने के लिए, आज से 5000 वर्ष पहले वे लीला किए, और प्रति वर्ष भक्त जन भगवान का अवतार मनाते रहते हैं। यह पर्व संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, भारतवर्ष में तो पहले से ही मनाया जा रहा था, और जितने भी पर्व हैं सबसे शुद्ध विधि से यही मनाया जा रहा है। आज के युग में भी बहुत प्रिय है जन्माष्टमी, घर घर में लोग उपवास रखते हैं। हम तो ऐसा समझते हैं कि कोई भी हिंदू परिवार नहीं होगा जिसमें एक दो आदमी न उपवास करते हैं जन्माष्टमी को,
भगवान के मंदिर में आते हैं। कल मैं देखा लोग आ रहे थे मंदिर में, बहुत बड़ी संख्या आ रही थी, और यही नहीं और सब मंदिरों में राधा वल्लभ जी में बांके बिहारी जी रंगनाथ। तो हमारे मन में एक विचार उठा कि लोगों की भगवान कृष्ण के प्रति सहज श्रद्धा है, सहज श्रद्धा है। तो मैं एक विचार कर रहा था कि हम लोगों का क्या कर्तव्य है। तो हम लोगों का कर्तव्य है, अगर उनकी श्रद्धा है तो हम लोगों का कर्तव्य है शुद्ध भगवत संदेश उनको देना, सही चीज जो उनके लिए हित के लिए है, जैसे श्रीमद भागवत कथा है, कीर्तन है, ये सब देना चाहिए। तो जन्माष्टमी पर इस प्रकार का आयोजन, यही हम साधुओं का कर्तव्य है वास्तव में, कथा करें, कीर्तन करें, भगवान के बारे में बताएं, इसी को प्रभुपाद जी प्रीचिंग कहते। भगवान का विग्रह देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो अभी प्रीचिंग है, लेकिन भगवान के संदेश को कहना ये साधुओं का कर्तव्य है, जिससे लोग भगवान से प्रेम करना सीखे। प्रेम की प्रवृत्ति तो है भगवान के प्रति उनकी, लेकिन वो बेचारे सोचते हैं भगवान का दर्शन कर लिए, कुछ भगवान को दिए, बस इतने से ही वो तृप्त हो जाते हैं। प्रेम है लेकिन वो प्रेम पूरा विकसित नहीं हो पाता है, उसको विकसित करने के लिए
श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा है, यह बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप सबको इसके लिए बहुत ही धन्यवाद है। और भगवान ऐसे मति में बैठे रहे कि हमेशा हो, प्रोग्राम चलता रहे, दैनिक भी और वार्षिक।
आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुखम कवि गलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार सुमय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मखनी त्रिपाप निवारिणी, जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारी, सुहाषदि हरि चरित जानकी, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुनासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की,
श्री भागवत महापुराण की जय।